हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही ने फिर गहरी सांस लेकर वेदांत से अपनी और रूहान के फोटोज खिंचवाईं। वेदांत वैसे तो खुश हो चुका था, कम से कम वो अपने भाई के किसी काम तो आ रहा था और वो चाहता था कि जितना ज्यादा हो सके वो उतने ज्यादा रूहान से बात करने के मौके बनाए, ताकि उसके दिल और दिमाग में माधवी ने जो नफरत बो रखी है उसे कम कर पाए। रूहान को पता चले कि उसका परिवार इतना बुरा नहीं है जितना माधवी ने उसकी नज़रों में बना दिया है। वहीं माधवी ने जैसे ही वेदांत को रूहान की फोटोज लेते देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने गुस्से में अपने मन में कहा कि अनाही, किसने इन दोनों भाइयों को भी एक दूसरे के लिए कितना सही कर दिया है। फिर ना पहले रूहान वेदांत का चेहरा देखकर भी उसकी तरफ नहीं देखता था, और कितनी बुरी तरह गुस्सा करता था जब वेदांत उसके लिए कोई काम करने की कोशिश करता था। और अब देखो कैसे बत्तीसी दिखाते हुए वेदांत से अपनी फोटोज क्लिक करवा रहा है, और जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बोलता है, नहीं ताई जी, आज भी मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। और कितना ज्यादा बदल चुका है। राधिका, जो बुरी तरह थक चुकी थी, वो थके कदमों से माधवी के पास आई और फिर अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए बोली, निवेदिता भाभी कितना काम करवाती है मुझे, आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? माधवी ने जल्दी से राधिका का सिर अपने कंधे से झटकते हुए कहा, इतना कौन सा बड़ा काम करवा लिया है तुमसे, बस नौकरों को लाइटिंग के लिए बोलना था कि इधर ये लाइट लगानी है उधर ये लाइट लगानी है, इसमें तुम थक गई हो। मैं किचन में पूरे 2 घंटे खड़ी होकर आई हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी तरह तो लाश नहीं बनी हो। उसकी ये बात सुनकर बेचारी राधिका का मुंह छोटा सा हो गया। फिर वो धीमे कदमों से सोफे पर बैठे रितेश के पास गई और उसके पास जाकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, आप लोग कितना आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठकर, और मैं वहाँ इतना काम करके थक चुकी हूँ। रितेश ने एक नज़र राधिका को देखा और फिर अपने सामने बैठे जिग्नेश को, जिसने अभी तक अखबार से अपनी नज़रें नहीं हटाई थीं। फिर उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे सामने भैया बैठे हैं, तुम क्यों बेशरम बन गई हो, हटो मेरे पास मत आओ। राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, भूल गए क्या बिहा ने क्या कहा था, हम लोग थोड़ा मॉडर्न बन गए हैं, अगर हम शादीशुदा हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। अब मैं भी मॉडर्न बन गई हूँ, आप लोगों की तरह छोटी छोटी बातों पर ऐसे नहीं कहूँगी, हटो यहाँ से, मेरे पास मत आओ, ये मत करो वो मत करो। हिम्मत है तो रात को बोलकर दिखाने की, मेरे पास मत आओ, तब तो प्लीज़ प्लीज़ आ जज, प्लीज़ प्लीज़ आ जज, तोते की तरह रट लगा देते हो, और मेरे पास आने के लिए मरते रहते हो, और सबके सामने कैसे ब्रह्मचारी की तरह मुझे हाथ भी नहीं लगने देते हो। रितेश की आंखें बड़ी हो चुकी थीं, उसका मन कर रहा था यहाँ से कहीं भाग जाए, क्योंकि उसकी बीवी तो अब अपनी बहू से ही इंस्पिरेशन लेकर मॉडर्न बन चली थी। आचार्य ने शर्म के मारे कुछ नहीं कहा, उसे लग रहा था कि वो कुछ बोलेगा तो राधिका कहीं और भी ज्यादा बेशर्मी पर ना उतर आए, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। राधिका ने फिर से उसके कंधे पर सिर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। शाम के वक्त निमानी हाउस में जोर शोर से पार्टी चल रही थी, सबने चमकते कपड़े पहने थे और बाहर से कई मेहमान बुलाए थे। वेदांत अपने बिजनेस कॉलीग से अपनी वाइफ को मिलवा रहा था और विहा काफी नर्वस नजर आ रही थी। वो बार बार वेदांत की बाँह पकड़कर उसे कमरे में जाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसे क्राउड से अजीब सी हिचकिचाहट हो रही थी, जैसे उसे लोग ही पसंद आना बंद हो गए हों। वेदांत ने उसे एक कोने में ले जाकर कहा, टमाटो बस 15 मिनट बच्चा, उसके बाद हम कमरे में चलेंगे। मैं नहीं बोल रहा कि तुम पूरी पार्टी अटेंड करो, लेकिन कम से कम एक बार हम सबको ग्रीट करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा कि दिवाली पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की है। वे अपने मन से नहीं आए हैं, उन्हें हमने खुद बुलाया है, तो अब ऐसे अपमान करना अच्छा नहीं है, ठीक है? इतना बोलकर उसने प्यास से विहा के माथे को चूमा और फिर से उसे भीड़ के अंदर ले गया। तब वहीं रूहान बहुत खुश था, क्योंकि उसने इस पार्टी के अलावा भी अनाही के लिए एक पार्टी अरेंज की थी, और ये सब कुछ उसने घर के बैकयार्ड में किया था, जहाँ एक प्यारा सा होला था और कुछ फ्लावर्स थे। सामने उसने टेबल पर लाइटिंग की थी और एक छोटा सा केक रखा था, साथ में थोड़ी ड्रिंक्स थी और एक सोफा था उन दोनों के लिए बैठने की जगह, जिस पर वाइट कलर की फ्यूरी वाली चादर बिछी हुई थी। ये सब कुछ बिल्कुल किसी परी कहानी की तरह लग रहा था। रूहान वीडियो कॉल पर मोहिनी को डेकोरेशन दिखाते हुए अप्रूवल ले रहा था कि उसकी मैडम जी को ये पसंद तो आएगा ना। उधर से मोहिनी ने इरिटेट होते हुए कहा, यार तुझे शर्म नहीं आ रही है, मुझे अपनी दिवाली पार्टी एंजॉय करने देना, तूने तो ड्रिंक करना छोड़ दिया है लेकिन हम लोगों ने नहीं। कॉल रख, मैं बहुत पी रखी हूँ यार, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि तुमने सामने क्या दिखाया है, और जितना मुझे नज़र आ रहा है वो सब कुछ बहुत प्यारा है। ट्रस्ट मी, तुम अब अगर अपनी मैडम जी के लिए गांधी से गांधी डेकोरेशन भी करोगे ना तो भी उसे बहुत अच्छी लगेगी। अब कॉल कट करो। इतना बोलकर मोहिनी ने कॉल कट कर दिया, तो वहीं रूहान का मुंह बन गया। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि उसकी डेकोरेशन की कोई भरपूर तारीफ करे, जिससे उसे यकीन हो जाए कि हाँ, ये सच में बहुत अच्छी है। वहीं अंदर माधवी और राधिका एक वेटर को समझा रही थी कि एक जूस के ग्लास में ड्रिंक मिलाकर उसे रोहान को देना है। बेचारा वेटर बहुत डरा हुआ था। उसके बावजूद उसने माधवी और राधिका के बताए अनुसार दो ड्रिंक्स रेडी की। अगर गलती से भी कोई एक ग्लास दूसरा ले ले तो कम से कम एक ड्रिंक तो रोहान ले ही लेगा। इतना बोलकर वो वेटर हाथों में वो ट्रे लिए उधर गया, जहां वीहा, राव्या, अनंत, वेदांत, अनाही सब लोग बैठे थे। रोहान भी वहां आ चुका था और अब वो काफी नर्वस नजर आ रहा था। उसे ऐसे देखकर मनी ने प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रोहान जी, आप खुश नजर नहीं आ रहे, आपको पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? रोहान कुछ बोल पाता उससे पहले ही वीहा ने गुस्से में कहा, उसे कोर्स अच्छी नहीं लग रही है, पार्टी भी कोई अच्छी लगने की चीज़ होती है, इससे ज़्यादा हम सिर्फ घर वाले होते, म्यूज़िक नहीं होता और हमने कंफर्टेबल कपड़े पहने होते, हम बैठकर कोई मूवी देख रहे होते, कितना अच्छा होता, मुझे इस आवाज़ से इरिटेशन होने लगी है। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, टमाटो बस खाना खाना है उसके बाद हम कमरे में चलेंगे, प्लीज़ चुप हो जाओ भगवान के लिए, आसपास वाले सुनेंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। तो वहीं मनी अब रोहान के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। रोहान ने फिर भी कुछ नहीं कहा, उसने भाभी की तरफ देखकर बस हल्की सी स्माइल पास की। अनाही ने ज्यादा उसे फोर्स नहीं किया, जिसके बाद वो वेटर उस ड्रिंक को टेबल के बीचों बीच रखते हुए बोला, ये सब कुछ आपके लिए निवेदिता मैम ने भिजवाया है। ये सुनकर राविया ने खुश होते हुए सबसे पहले एक ड्रिंक उठाकर कहा, थैंक गॉड, किसी को तो ख्याल है कि हमें भूख लगी है, फिर ना सब लोग तो इतना बिजी हो चुके हैं, मैं तो शाम को खाना बनाते बनाते इतनी थक गई थी, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोलकर उसने वो ड्रिंक जल्दी से खत्म कर दी। किसी और ने दूसरी ड्रिंक उठाई भी नहीं थी, उससे पहले ही उसने दूसरी ड्रिंक भी उठाई और उसे एक सांस में पी गई। उसे ऐसा करता देखकर अनंत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये लड़की दिन ब दिन और बदतमीज होती जा रही है।
वहीं बेचारे वेटर की आंखें फैल चुकी थी, क्योंकि राव्या ने वो दोनों ड्रिंक्स पी ली थी जो उसने रोहान के लिए बनाई थी। उसके बाद बाकी लोगों ने भी एक एक ड्रिंक ले ली। तो वहीं वो वेटर बेचारा डरता हुआ माधवी और राधिका के पास गया, जो कब से उसका इंतजार कर रही थी। माधवी ने खुश होते हुए कहा, क्या उसने वो ड्रिंक ले ली? वेटर ने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी मैडम, लेकिन आपकी बहू ने उन सब लोगों से पहले ही वो ड्रिंक पी ली। ये सुनकर माधवी ने अपना माथा पीट लिया। वहीं राधिका की भी आंखें फैल गईं। माधवी और राधिका ने फिर झट से राव्या की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से उनके पास जाने लगीं, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि राव्या अब सबके सामने तमाशा बनाए।